शांति। आज हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी पहुंचे हुए हैं। हम सभी गीता बहन जी का एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। 45 वर्ष से भी ज्यादा आप बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं और उसके साथ ही आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। अहमदाबाद राजयोग भवन आदरणीय सरला दीदी के सानिध्य में रह करके बहुत सारी सेवाएं आपने की हैं, बहुत सारे सेंटर्स भी खोले हैं और सेवाओं को आगे बढ़ाने हेतु आप भावनगर सब जोनल इंचार्ज के रूप में भी आपने सेवाएं दी हैं। साथ ही ज्ञान सरोवर परिसर में भी आपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान समय पर आप ब्राह्मण भाई बहनों की स्वउन्नति और राजयोग शिविर के माध्यम से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो हमारी 20 विंग है उसमें से बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। राजयोग शिविर जो हमारी चल रही है उसकी शुरुआत भी आपसे ही हुई है। तो ऐसे हमारे वरिष्ठ यज्ञ की वरिष्ठ बहन राजयोग का शिक्षिका फैकल्टी मेंबर अनेक कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार रिट्रीट में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। तो आज हम गीता बहन जी के द्वारा कर्तव्य के प्रति जागरूकता के बारे में विषय पर हम सभी सुनेंगे। बहुत ही अनुभवी मूर्त प्रेरणादायी बातों से हम सभी को लाभान्वित करेंगी आदरणीय गीता बहन जी। ओम शांति।
ओम शांति। पांडव भवन की तपोभूमि में आप सबका भी स्वागत है। वैसे तो मधुबन में आते हैं चार धाम की यात्रा के लिए, पर इस बार आपको मौका मिला है यहाँ रहने का। भक्ति में हम देखते हैं कि लोग बड़ी श्रद्धा से जाते हैं अपने गुरुओं की समाधि के स्थान पर। ये वो भूमि है जहां बाबा ने खुद तप भी किया, दादियों ने भी किया। कर्म भूमि भी यही रही है ना। यहां आने के बाद ही सेवा शुरू हुई। मधुबन के कण कण में बाबा के चरित्र समाये हुए हैं और ड्रामा की ये प्रथम आत्मा है जिसने अपना संपूर्णता भी इसी भूमि पर सिद्ध की है। बाबा व्यक्त यहां ही हुए और उनका यादगार स्थान भी यहां पर हुआ है। तो बहुत नेचुरल योगी हम यहां बन सकते हैं क्योंकि चारों ओर बाबा के यादगार स्थान हमें दिखाई देते हैं। यहां उठते बैठते आते जाते बाबा और बाबा के चरित्रों की याद आती रहे, ये भी एक प्रकार से योग है। ये भी योग है। मधुबन में हम रहते हैं, हमें पता है कि 18 जनवरी के दिन भी यहाँ तो पार्टियां होती है। उस दिन भी कोई विशेष योग करने का मौका हम लोगों को नहीं होता है, लेकिन यहाँ नेचुरल योगी बनने के मौके साकार में भी कोई यहाँ आते थे और पूछते थे बाबा से कि बाबा ये सब किसका है। तो बाबा कहते थे बच्चों का। और जब बच्चों से कोई पूछते थे कि ये सब किसका है, तो बच्चे क्या कहते? बाबा का है। दुनिया में गद्दी के लिए लड़ते हैं ना, यहाँ कोई मालिक बनने तैयार नहीं। बच्चे कहे बाबा और बाबा कहे बच्चे। ये जो दिल का सौदा है, संबंध है बाबा से, जो अपनापन है, उसी से याद आती है। और उस याद में, एकाग्रता आना और उस याद को इंटेंस बनाना, एक ध्येय से करना, उसे तपस्या कहते हैं। तपस्या माना लक्ष्य पूर्वक करना और पूरी एकाग्रता से करना। ज्ञान तो पूरा बाबा ने दे दिया है, कोई भी सब्जेक्ट बाकी है? मनुष्य से देवता बनने के लिए जो जरूरी है वो सारी बातें बाबा ने बताई है, जो जरूरी नहीं है वो नहीं बताएंगे बाबा। कहा है ना बाबा ने कि नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। बाबा ने अब एक तो मुरली में कहा है ना, जो बातें नहीं बतानी है वो नहीं बताते। कई बच्चे पूछते हैं ना कि जानवरों की आत्मा कहाँ जाएगी विनाश के बाद, तो बाबा नहीं बताते। मनुष्य से देवता बनाने बाबा तो आया है ना, पतित से पावन बनाने आया है, तो उसके लिए जो जरूरी है वो बात बाबा बताते हैं। और वो सारा ज्ञान बाबा ने हमें बताया है, हम उसको समझ रहे हैं, प्रैक्टिस में ला रहे हैं, स्वरूप बन रहे हैं। बाबा ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, प्यार भी दिया। बाबा प्यार करते हैं कैसे? आप कैसे अनुभव करते हैं बाबा प्यार करते हैं? साकार में जो मिले वो तो ठीक है, अव्यक्त में जो स्टेज पर जाकर मिलते हैं चलो वो भी ठीक है, पर हम सबका तो नंबर नहीं लगता है ना। बाबा हमें प्यार कैसे करते? प्यार तो प्रैक्टिकल चाहिए, सूक्ष्म वचन में कैसे? बाबा प्यार करते हैं ना। एक तो बाबा हमें इतना समझाते हैं, इतना कौन समझाएगा बताओ, है ना? आप भी एक बार, दो बार, चार बार समझा के थक जाते हैं, जाओ तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठेगा करके हम चिढ़ जाते। बाबा सालों से समझा रहे, समझाना भी प्यार है ना? तभी तो हमारे पीछे इतनी मेहनत बाबा कर रहे हैं, बहुत ऊंची नजर से हमें देखते हैं, इतनी ऊंची नजर से किसी ने देखा? हाँ, कोई दैहिक दृष्टि से देखता है, कोई द्वेष से देखता है, कोई मेरे तेरे की भावना से देखता है, पर बाबा की तरह कल्याण की भावना से, इतनी ऊंची नजर से देखना और किसी ने देखा हम बच्चों, तो ये भी तो प्यार है ना बाबा। हमारे में ऊंची आश रखना, उम्मीद रखना, यही देवता बनेंगे, यही स्वर्ग के द्वार खोलेंगे, तो ये भी तो प्यार है ना। तब तो इतना पढ़ा रहा है और प्रैक्टिकल में पालना दे रहा है। आज बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है, वो किसके लिए रचा है? हमारी उन्नति के लिए रचा है ना, नहीं तो भगवान भी तो कह सकते थे कि ज्ञान दे दिया, अब जाओ अपने घर में बैठ के पढ़ो। हाँ, पर आज इतने सेंटर्स खोले, इतना बेहद का मधुबन घर बनाए, हमारी उन्नति के लिए इतने प्रबंध रचाते हैं, तो ये क्या है? प्यार है ना? पालना देते हैं इतनी, वो प्यार है। अब हम बच्चों का भी तो कर्तव्य है, सिर्फ पालना लेकर लेते ही रहना है या हमें कुछ रिटर्न भी करना है? हाँ, ये भी कर्तव्य है, ये भी फर्ज है कि जो बाबा हमारे लिए आए हैं, हमें इतना ज्ञान समझा रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी पालना कर रहे हैं, इतनी हिम्मत भरते हैं, इतना उमंग उत्साह भरते हैं, हमारा भी बाबा के लिए फर्ज है। बाबा ने अधिकार तो दे दिया कि हर आत्मा संपूर्ण बन सकती है। दुनिया में तो हरेक को अधिकार नहीं मिलते, पढ़ते हो ना आजकल क्या क्या है संसार में। किसी को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, किसी को कोई शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, किसी को साधु संत बनने का अधिकार नहीं। संसार में तो कितने भेदभाव है। बाबा के तरफ से हर आत्मा को अंतिम जन्म में हम सभी आत्माएं शुद्र बन गई है, विकारों से भर गई है, कोई गुण नहीं रहे, कोई कला नहीं रही। ऐसी आत्माओं के लिए बाबा के तरफ से ऑफर है ना कि हरेक आत्मा को अधिकार है बाप से पढ़ाई पढ़ने का, पालना लेने का, संपूर्ण बनने का, वारिस बनने का। अधिकार तो हम प्राप्त कर रहे हैं, पर अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा है ना? हमें खुद ही होता है कि ऐसे बाबा के लिए हम क्या करें। उस पर कुर्बान हो जाएं, क्या क्या अपना सफल करें। पर यह भी पता है कि जो कुछ करेंगे वो जमा तो किसका होगा? मेरा ही होगा। मतलब ऐसा निष्काम बाबा है ना, कुछ लेगा भी नहीं। हम जो कुछ करेंगे हमें ही रिटर्न मिलना है, हमें ही भाग्य बनना है। ये तो ड्रामा में एक विधि है। भगवान ऐसे ही नहीं दे सकते, ये कर्म क्षेत्र है ना। कर्म क्षेत्र का सिद्धांत तो क्या है, करेगा वो पाएगा। कर्म क्षेत्र का सिद्धांत तो ये है ना, और भगवान कर्म क्षेत्र पर आए हैं तो ये सिद्धांत में चलकर ही वो कारोबार करेंगे। अगर वो ऐसे ही दे फिर तो सबको दे, फिर तो सबको देगा ना, फिर तो पुरुषार्थ की योग्यता की कोई बात ही नहीं रहेगी, फिर तो भगवान हरेक को देवे ना। तो ड्रामा में बाबा ने दो विधि रखी कि एक तो ब्रह्मा द्वारा जो मुझे पहचानेगा और मेरा बनेगा वो उसका हकदार बनेगा। ब्रह्मा द्वारा जो मेरा बनेगा, क्योंकि वो ब्रह्मा तन में आए हैं और वहां ही हरेक के विवेक की परख हो जाती है कि कौन कितना सत्य को परख सकता है। देखने में तो ब्रह्मा आ रहा है और ब्रह्मा तो साधारण मानव तनधारी है, भगवान के सत्य ज्ञान को परखने के लिए विवेक चाहिए, तो विवेक की परख हो जाती है। जो माध्यम की साधारणता देखता है तो वो नहीं बनता है बाबा का। अभी कुछ पंजाब के मेहमान आए थे, उस एरिया में तो अभी तक भी बहुत भ्रमणाएं फैली हुई है, भ्रांतियां हैं। वो कहता हम तो समझ ही रहे थे कि ये बहनों की संस्था है, इसलिए उस तरफ कभी देखते ही नहीं थे, इतने सालों के बाद भी। तो साधारण ब्रह्मा को देखते हुए परमात्मा के सत्य ज्ञान को जो परखता है वो हकदार बनता है। और वो सद्विवेक हम बच्चों में है जो उनके बने हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। परिचय ज्ञान तो सबको दिया जा रहा है पर परखता कौन है? जिसकी तीसरी आंख खुली, हम बच्चे। और दूसरी मेथड बाबा ने ये रखी कि जो अपना कखपन देगा वो लखपन पाएगा। इस अंतिम जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है, बाबा कहता है क्या है मुझे भी पता है, बाबा कहता है रोगी तन है, पतित मन है, काला धन है, बाबा ऐसे कहते हैं ना। कलियुग के अंत में मनुष्यों के पास क्या होगा? विनाशी धन है चलो, पर फिर भी जो बीज बोएगा सहयोग का वो भाग्य का फल पाएगा। ये मेथड रखी बाबा ने। भगवान को तो पर्सनली कुछ भी नहीं चाहिए ना। हम जो कुछ तन मन धन से सहयोग करते हैं उससे हम ही अपने रहने की, पढ़ने की, पढ़ाने की सुविधाएं बनाते। तो जो बाबा कहते हैं इतना भी लगाएगा, कुछ लगाएगा तो कुछ पाएगा। तो सबसे पहले हमें ये महसूस हो कि बाबा से हमें क्या क्या प्राप्ति है, भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहा है। कभी हमने खुद भी नहीं सोचा था हम कोई मनुष्य से देवता बने, ऐसा कभी सोचा था? बाबा कहते हैं ना कि सोचने का भी अकल नहीं, प्रश्न पूछने का भी अकल नहीं। बाबा कहते हैं ना मंदिर में पूछो भाई इसको राजाई किसने दी, पर वो भी तो चाहिए ना, सेंस हो तो पूछे ना। बात तो सिर्फ दर्शन की थी, नमन की थी, पूजन की थी, तो वहां सोचता कौन है? कहने का भावार्थ कि बाबा ने सद्ज्ञान दिया, संपूर्ण ज्ञान दिया। आज जिनके पास ज्ञान नहीं है, आप तो अपने आसपास देखते ही होंगे, बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो जीवन की हालत क्या है? अपने आप को समझा नहीं पाते। आज हमारी बुद्धि में ज्ञान है तो कोई भी बात आती है, परिस्थिति आती है तो तुरंत ज्ञान से उत्तर भी तो बुद्धि में आ जाता है, आता है कि नहीं आता? हाँ? कि चलो कोई बात नहीं, ड्रामा, इसमें भी कोई कल्याण, ये भी हिसाब, ये भी चला जाएगा, कुछ भी, मतलब ज्ञान तो बुद्धि में आता है। तो बाबा कहता है मेरा समय पर सृष्टि पर आना और आकर तुम बच्चों को ज्ञान देना, ये मेरी सबसे बड़ी कृपा है तुम्हारे। और कोई कृपा की बात नहीं है, भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो समय पर, एक्यूरेट टाइम पर आता हूं बाबा कहते हैं ना, और आकर हमें सद्ज्ञान देता है। बुद्धि भी बाबा ने दी, सद्बुद्धि बाबा ने दी। बाबा कहते तुम पहले से ही बहुत बुद्धिमान थे तो तुम्हारी उतरती कला क्यों हुई, खोट का धंधा क्यों किया? बाबा पूछता है ना, इतना सब दिया था तुमने कहां गंवा दिया, देवाला क्यों मारा, ताज तख्त कहां गंवा दिए? तो सद्बुद्धि तो नहीं थी ना, तब तो सब कुछ गंवाया, उतरती कला हुई। कई बार हम समझते हैं ना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट हूं, पर बाबा कहते बहुत इंटेलिजेंट थे तो ताज क्यों चला गया, तख्त क्यों चला गया, जीरो क्यों हो गए? तो सही बुद्धि, सद्बुद्धि, दिव्य बुद्धि किसने दी? बाबा ने दी। तो बुद्धि बाबा ने दी, ज्ञान बाबा ने दिया, ये परिवार बाबा ने दिया, इतना पवित्र परिवार का संगठन दुनिया में कहीं मिल सकता है? कोई भी सत्संग में चले जाओ, पवित्र योगी आत्माओं का ऐसा संगठन मिलेगा। और वो भी गर्भग्रस्त में रहते हुए, इतनी पवित्र आत्माओं का परिवार बाबा ने ही तो बना के दिया। हमें तो एक भी आप समान बनाना हो तो कितनी मेहनत लगती है। साल में एक भी बनता है, एक साल में एक भी समान बनाने में कितनी मेहनत लगती है। जिसके पीछे आप बहुत ध्यान देंगे वो बनेगा नहीं, और जिस पर ध्यान नहीं देंगे वो बाबा का बन जाता है। तो कौन बनाता है, हम तो निमित्त होते हैं। अच्छा, भल ब्राह्मणों में नंबर वार है, वैरायटी तो हम है ना, नंबर वार पुरुषार्थी है। भल हम नंबर वार है, वैरायटी स्वभाव संस्कार वाले हैं। कई बार कई कहते भी है कि इससे तो दुनिया में अच्छे है, ऐसे भी बोल देते दुनिया में होंगे, वेल मैनर्ड होंगे, अच्छी क्वालिटीज वाले होंगे, पर सद ज्ञान की परख उनके पास है, वो भगवान के बने हैं। वो कितने भी अच्छे हों पर परमात्मा को तो नहीं पहचान रहे ना, उनसे तो उनका संबंध नहीं है ना। तो आप उनके संग में रहेंगे तो कहां जाएंगे, कलयुग में। यहां भल नंबर वार है, पर है तो हम सभी संगम युग में ना, भगवान से जुड़े हुए। इतनी ऊंची सेवा बाबा ने की है, आज आधे लोग हमें इसलिए पहचानते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारी में जा रहे, ओम शांति में जा रहे, है कि नहीं ऐसा। पहले आपको कितने लोग पहचानते थे और अब कितने पहचानते। और ये बैज, ये ड्रेस, बाबा का ज्ञान, सेवा के कारण हमें कितनी मदद मिलती, अनुभव है सबको। हरेक हमें रिस्पेक्ट रिगार्ड देंगे और सहयोग देते। तो बाबा ने हमारी ऐसी पर्सनालिटी बनाई, बाबा की सेवा के कारण हम वैल्युएबल बने। तो लोग ऊंची नजर से देखते हैं, स्थान देते हैं, मान देते हैं, सहयोग देते हैं। तो संगम युग सिर्फ पुरुषार्थ का है या प्राप्ति का भी है? है ना प्राप्ति, मेहनत का है या प्राप्तियों का भी है? सबसे बड़ी प्राप्ति तो अभी होती है, सतयुग तो उसका फॉलो अप है। संगम के श्रेष्ठ कर्मों का फल वो तो है, पर मेन श्रेष्ठता तो संगम की है। तो जब प्राप्ति का एहसास है तो हमें अपने कर्तव्य की जागृति भी आती है कि हमें सिर्फ बाबा से लेना नहीं है पर हमें रिटर्न भी करना है। हमें भी अपना फर्ज बजाना है। तो सबसे पहले व्यक्ति का, खुद के प्रति कर्तव्य है अपने आप को संपूर्ण बनाना। ये हमारा पहला कर्तव्य है। बाबा कहते हैं ना, सबसे पहली कृपा खुद खुद पर करो, रहम खुद खुद पर करो, क्योंकि जो खुद जितना ऊंचा बनेगा उतना ही वो दूसरे को बना सके। ऐसे नहीं जितना हो सकता है करते हैं, भक्ति में ऐसा कहते हैं ना, यथाशक्ति यथा भावना, ऐसे कहते हैं ना भक्ति में। यहां यथाशक्ति यथा भावना नहीं, संगम युक्त तो है, बीसों नाखूनों का जोर लगाने का, ये पूरी ताकत से, पूरे निश्चय से, पूरी लगन से हमें अपने आप को संपूर्ण बनाने का पुरुषार्थ करना है। बताया ना, ये 2016 है, माना 200 नाखूनों का जोर लगाकर 16 कला संपूर्ण बनना है। 2016 में क्या करना है? ऐसे नहीं चल रहे हैं, इतना नहीं, ज्ञान में चल रहे हैं, नहीं। बाबा कहता है ना, दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, एक लक्ष्य पूर्वक कि मुझे संपूर्ण बनना है। भगवान बनाने की मेहनत कर रहा है तो हमें भी क्या करना चाहिए? बाबा को जितना उत्कंठा है, उमंग है हमें पतित से पावन बनाने की, उतना हमें खुद को पतित से पावन बनाने की उमंग है, हमें भी इतना उमंग उत्साह। क्यों अंश वंश भी विकार का रहे, बनना है तो पक्का और सच्चा, कच्चा ढीला ढीला नहीं है ना। ये खुद का खुद के लिए कर्तव्य है, नहीं तो अपने आप को ही अफसोस होगा ना कि बाबा तो कह रहे थे, दादियां तो कह रही थी, हमने ही ध्यान नहीं दिया। खुद के लिए, खुद के लिए करना है ना। जब हम बाबा से जुड़ते हैं, बेहद के ज्ञान से जुड़ते हैं, तो हमारे कर्तव्य भी बेहद के हो जाते। पहले लौकिक परिवार से ही जुड़े हुए थे, लौकिक परिवार के प्रति भी जो हमारा रोल है, पार्ट है, आपका तो डबल पार्ट है ना, हम तो सिंगल पार्ट धारी है, पर आप लोग तो डबल रोल में प्ले कर रहे हैं। फिल्मों में आता है ना, एक ही एक्टर डबल रोल प्ले करता है, आप डबल रोल प्ले करने वाले एक्टर, लौकिक और अलौकिक दोनों है। हमारा तो एक ही पार्ट है ना अभी। तो लौकिक के प्रति भी कर्तव्य है। बाबा ने एक बार कहा था कि लौकिक अलौकिक पारलौकिक, पिता प्रति जो कर्तव्य है जब तक वो अदा नहीं करेंगे हम कर्मातीत बन नहीं सकते। हम कर्मातीत नहीं बन सकते तब वो फर्ज भी अदा कर दे। जो जरूरी है वो पार्ट प्ले कर। तो बाबा ने बहुत अच्छा हमें सिखाया है कि लौकिक में तोड़ना भी नहीं है। भाई संबंध तोड़ दे, नहीं, बाबा ने ऐसा हमें नहीं सिखाया। बाबा ने तो क्या कहा है, गृहस्थ में रहते कमल बनने के लिए बोला। जिन्होंने रचना रची है, परिवार रचा है, तो फर्ज भी है। ऐसे नहीं ध्यान ही न दे। हाँ, हम कुमारियों का रोल अलग है। कुमारियों के लिए तो बाबा का साफ आदेश है कि आपको बाबा की सेवा में लग जाना है। बाकी भाई बहनों को तो आदेश है कि अपना लौकिक फर्ज भी निभाना है। तो तोड़ना नहीं है, नया जोड़ना भी नहीं लौकिक में। ये भी ध्यान रख कि जो है बस वो ठीक है, बढ़ाना नहीं है। अब नहीं तो उसमें ही फंसे रहे। जिस समय हम बाबा के बने उस समय जो संबंध थे वो तोड़ने नहीं है, नए जोड़ने नहीं है। हमें तो तोड़ निभाना है, तोड़ निभाना है। हमें निमित्त अपना पार्ट प्ले करना। हमने कईयों का देखा, कई कुमार उमंग से छोड़ छाड़ के आ गए। कईयों के मां बाप जब आए कि दादी हम अकेले हैं, हमारी कोई सेवा करने वाला नहीं है। दादी ने 8 साल 10 साल 15 साल के बाद भी उस कुमार को वापस भेजा कि तुम्हारा पहला फर्ज है माँ बाप की सेवा करना, वो हिसाब पूरा करने के बाद तुम आओ। तो मेरा रोल क्या है ये लौकिक में समझना, जितना हो सके ज्ञानयुक्त बनाना है, पर निभाना तो है ना। लौकिक परिवार वाले समझे हमारे बीच में ऐसा एक ज्ञानी है, ऐसी तपस्वी आत्मा है, हम इनके पुण्य से भी पार हो जाएंगे, ऐसा आपके लिए वो समझे, महसूस करे। भले वो विरोध करेंगे पर अंदर से समझते हैं कि ये पवित्र योगी आत्मा है। ऐसा हमें लौकिक के बीच रहना। आप ज्ञान में हैं ये सब जानते हैं। जानते हैं आपके लौकिक वाले, हाँ, जहां आप नौकरी करते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वो लोग तो जानते हैं ना। छिपाया तो नहीं है ना, हाँ, डरते तो नहीं है उधर, हाँ, जानते हैं सब। ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, ओम शांति वाले हैं, जानते हैं, हाँ। अब वो ये समझे कि ये ब्रह्मा कुमारी वाले आजकल अब तपस्वी बनते जा रहे, योगी बनते जा रहे, ज्ञानी हैं ये जानते हैं, सेवा करते हैं ये जानते हैं, नियम मर्यादाओं में रहते हैं ये जानते हैं, पर अब कौन सा सर्टिफिकेट लेना है कि अब ये योगी है, तपस्वी है। ऐसा अंतर्मुखी रूहानी पर्सनालिटी हमारी बनती जाए, वो महसूस करेंगे कि ये योगी हमारे बीच में है, इनके तप से भी हम पार हो जाएंगे। जिस अलौकिक परिवार के साथ हम हैं, जो जिस जिस सेंटर से आए हैं, जो जहां रोज पढ़ने जाते हैं, जहां से आपको पालना मिलती है, हर सेंटर का अपना अलौकिक परिवार है। अलौकिक परिवार भी तो हमें मदद करता है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने में कंपनी कौन देते हैं? अलौकिक परिवार देता है ना? हिम्मत भरते हैं, अनुभव सुनाते हैं, निश्चय की बात करते हैं, तो हमें एक दूसरे से बल मिलता है ना? निमित आत्माओं से तो मिलता ही है, पर आपस में भी हम एक दो की पालना करते हैं ना? ज्ञान योग से बल भरते हैं ना? तो इस परिवार के प्रति भी हमारा कर्तव्य। दो बात मैं बताना चाहूंगी कि अलौकिक परिवार में भी हम अलौकिक बन कर रहे, यहां हम लौकिक नहीं बन जाए। कई बार हम यहां आपस में लौकिक बन जाते, स्थूल, तुम मेरे घर आना मैं तेरे घर आऊंगी, है ना, लौकिक टाइप का हमारा संबंध हो जाता। तो सबसे पहली बात कि ये अलौकिक परिवार है। जब मैं ही अलौकिक परिवार से न्यारी हो रही हूं, तो मुझे अलौकिक परिवार को तो लौकिक में नहीं खींचना है ना। हम आपस में अलौकिक बनकर चले। और दूसरा कि हम ऐसा एग्जाम्पल बने जैसे ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल बने, दादियां एग्जाम्पल बने, है ना, बड़े एग्जाम्पल है। हर सेंटर में ऐसे आदर्श हमें बनना, ताकि हमें देखकर भी कोई पुरुषार्थ करे तो वो मंजिल पर पहुंच जाए, मिसगाइड नहीं हो जाए। हमारे से सही सीखने को मिले, कोई भूल से हमें भी फॉलो करे तो वो बाबा तक पहुंच जाए। ऐसा सैंपल बनना है, उदाहरण बनना है। कि ये बाबा के बच्चे ऐसे हैं, पूरी श्रीमत पर। इसकी कोई कंप्लेन नहीं, ना लौकिक में ना अलौकिक में। हमें देखकर लोग निश्चय बुद्धि बने, हिम्मतवान बने, पुरुषार्थी बने, बाबा से जुड़े, निमित्तात्माओं से जुड़े। एग्जाम्पल, विशेषकर जो पुराने भाई बहने हैं उन पर तो बड़ी जवाबदारी। और हर ब्राह्मण के पीछे नए भाई बहने तो है ही है, तो अपने अपने सेंटर में विशेष उदाहरण मुहूर्त कि उसको लौकिक अलौकिक में बैलेंस करके चलना आता। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा के प्रति भी हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। हमारा बाबा के लिए कर्तव्य क्या है? कल्प में एक ही बार बाबा मिलते, भगवान एक ही बार आते हैं। यही मौका है उस पर कुर्बान जाने का, और कोई मौका आएगा? तो हमें सच्चाई सफाई से उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा की दिल पर कौन चढ़ता है? सच्चाई सफाई से श्रीमत पर चलने वाला, दोनों चीज। हम श्रीमत पर चलते हैं परंतु कई बार मनमत भी मिक्स कर देते हैं, श्रीमत को डाइल्यूट कर देते हैं। बाबा समान बनना, हर माँ बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कि बच्चा मेरे से भी बढ़कर हो और मेरा नाम रोशन करे। बाबा की इन आशाओं को पूरा करना किसका काम है? हम बच्चों का काम है। तो हमें सोचना है, ऐसा नहीं सीजन में बाबा ने कहा, बाबा भी गया और हम भी भूल जाएं, ऐसे नहीं। हर सीजन में बाबा हमें होमवर्क देता है, गाइडलाइन देता है, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। तो पूछो, बार बार खुद से पूछो कि मैंने ये लक्ष्य बनाया, बाबा कहता है बरोबर है, पर मैंने ये लक्ष्य बनाया है। वैसे तो जीवन अच्छा ही है ना हमारा, हम पवित्र हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, नियम मर्यादाओं में हैं, हम सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, अभी हम जो हैं जैसे हैं अच्छे ही है ना। संपूर्ण बनने की जरूरत है? कई सोचते हैं ना हम अच्छे ही है ना, आप क्या ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम ओवरऑल ठीक हैं। तो ये खुद शांति से बैठ के अपने आप से बात करो। मधुबन में इसलिए तो आए हैं आप, साइलेंस में बैठ के सोचो, पूछो अपने आप से क्या विचार। बाबा के प्रति हमारा ये कर्तव्य है ना कि जो कार्य करने के लिए बाबा आया है वो हम अपने जीवन से तो कंप्लीट करके दे। हमारा समाज और विश्व के प्रति भी फर्ज है। एक इंसान के रूप में भी तो कहते हैं ना फर्ज। हम तो योगी हैं, अब सिर्फ इंसान थोड़ी है, हम तो योगी आत्मा है। सिर्फ खुद का जीवन बनाना इतना ही हमारा लक्ष्य नहीं, हमें तो विश्व सेवा करनी। कई बार हम सोचते हैं ना कि अपना जीवन तो अच्छा बन गया ना, हम तो झंझटों से मुक्त हो गए, ज्ञान में आए तो कितने लफड़ों से मुक्त हो गए, नहीं तो समाज के कितने रीत रस्मों में, अंधश्रद्धाओं में, कुरीत रिवाजों में कितने फंसे हुए थे। अपन तो मुक्त हो गए, बस सब खाओ पियो मौज करो। या हमें सेवा भी कर ली, कर्तव्य ये भी कर्तव्य है। हमें विश्व कल्याण का कार्य करना है। बाबा क्यों कहता है हरेक को संदेश दो? जिस सोसाइटी में, गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, जाति में, समाज में से हम आए हैं, हमें उनका भी कल्याण करना है, संदेश देना है। न सिर्फ संदेश, हमें तो कल्याण करना है ना, अनुभव कराना है। जब तक सेवा में हड्डियां नहीं लगाएंगे फरिश्ता कैसे बनेंगे? सिर्फ योग में बैठ के मैं लाइट हूं, फरिश्ता हूं, इतना सोचने से फरिश्ता हो जाएंगे? प्रैक्टिकल हड्डियां गलानी पड़ेगी ना, हमें सेवा करनी है। बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी सेवा करेंगे तो ये हड्डियों का अभिमान खत्म होगा। एक सत्य पता चला है तो फर्ज है ना बताना, बताने के बाद भी तो बाबा कहता है ना कि नए नए तरीके से बताते रहे। इस सीजन में भी आप देखो मुरलियां पढ़ना, रिवाइज करना। अभी जो सीजन गई 2015-2016 की सीजन में भी बाबा ने कहा कि अभी भी तुम नए नए तरीके से करते रहो। ऐसे भी नहीं एक बार बता के बैठ गए। और ये भी प्रैक्टिकली ये भी एक चाहे सेवा है, कर्तव्य है, पुरुषार्थ है, अल्टीमेट इससे हमारी अवस्था ही बनती, हमारी स्थिति ही इससे बनती। बहुत अच्छा एक ने लिखा था कि सत्य ज्ञान की परख ही ये है कि अंधकार खत्म हो जाए। हमें ऐसा बुद्धि में बिठाना है ज्ञान कि जीवन बदल जाए। तो हमें भी अपने जीवन से संतुष्टता होगी कि हमने संगम युग सफल किया, हमने संगम के दिन सिर्फ खा पी के मौज नहीं की है, सिर्फ हमने बाबा से लिया नहीं है, परंतु हमने अपना कर्तव्य भी अदा किया है। और आपका अनुभव भी होगा कि अपना कर्तव्य अदा करने का एक आनंद होता है और उसका एक गौरव व्यक्ति को महसूस होता है। तो दादी पक्का कराती है ना, दादी जानकी की, मैं 3 बार ओम शांति बोलती, कहती है ना ऐसे। और हमेशा कहती है कि पहली ओम शांति माना मैं कौन, और दूसरी ओम शांति माना मेरा कौन, और तीसरी ओम शांति माना मुझे क्या करना है, कर्तव्य। तो शांतिवन में रोज शाम को दादी जब ठीक थे तो रोज शाम को योग में आते हैं ना, फिर 15-20 मिनट रोज मिलते हैं, बोलते हैं। तो हमें भी ये महसूस हुआ कि ज्ञान का सार ही ये 3 बात है कि मैं कौन हूं। जितना अच्छी तरह महसूस करेंगे उस हिसाब से अपने आप हमें रियलाइज होता है कि मेरा कर्तव्य क्या है और मैं किसका हूं, माना मेरा कौन है। तो भी महसूस होता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। इसलिए कहना नहीं पड़ता है हमें, है ना, बाबा के बच्चों को खुद रियलाइज होता है आज हम क्यों दिल से सेवा करते, उसका कारण ही ये है ना कि हमें अपने आप महसूस होता है कि हमारा अब कर्तव्य क्या है। और शांति से बैठ के और चिंतन करना और उसको रियलाइज करके अपना प्लान बनाना कि हमें अपने कौन से कर्तव्य अदा करने हैं। ओम शांति।
ओम शांति। हम ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या है उसकी अवेयरनेस आज गीता बहन जी ने हम सभी को सुनाई। बहुत ही गूह्य बातें थी समझने जैसी। बाबा के तो बन गए, लेकिन बाबा के बनने के बाद हमने किया क्या?